वर्षा काल का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के 20वें अध्याय में वर्षा और शरद का वर्णन है। हम का वर्णन सुन रहे हैं। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडोकाद्य सृजन गृह गिरह तुष्णीं शयानः प्राजद्वद् ब्राह्मणा नियमात्यये। मंडूकः पर्जन्य निनदम श्रुत्वा गिरह व्यसृजन यथा ब्राह्मणः तुष्णीं शयानः शंतः नियमात्यये। वर्षा काल में जब मेघ गरजते हैं तो उसको पर्जन्य निनदम कहते हैं। पर्जन्य का निनाद, मेघ का गर्जना सभी जानते हैं, तो उसको सुन करके श्रुत्वा पर्जन्य निनदम श्रुत्वा मंडूक का गिरह व्यसृजन, मंडूक दर दूर बोलने लगते हैं। मंडू मंडू करोती थी मंडूक का मेघक बैंग, समझते हैं, जब बादल गरजते हैं तो ये भी बोलने लगते हैं अपनी अपनी भाषा में, जो भी है बोलने लगते हैं। व्यसृजन मतलब मुक्त करते हैं, बोलते हैं गिरह मन वाणी, जो पहले चुप रहते हैं लेकिन बादल की आवाज सुनते ही बोलने लगते हैं। तो इस दृश्य से सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं जैसे ब्राह्मणा शिष्य रूपा ब्राह्मणा छात्रगण विद्यार्थीगण सोते हैं रात में, लेकिन भोर में आचार्य की आवाज सुनते ही जग जाते हैं और नहा धोकर अपना अपना पाठ भजन जप चालू कर देते हैं। रात में सोए रहते हैं, जब ही जगाने वाला गुरुकुल का टीचर या कोई जगा देता है तो इसके बाद अपना पाठ करने लगते हैं। इसका बहुत सुंदर अनुवाद है हिंदी में रामायण में, दादुर धुनी चहू दिशा सुहाई वेद पढ़े ही जन पट समुदाय। मेढकों के बोलने से तुलना की जा रही है विद्यार्थियों के वेद पढ़ने से। जैसे मेढक अपने अपने आवाज में बोलते रहते हैं, दूसरे की परवाह नहीं करते, किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता। इसी तरह से सवेरे अपना वेद पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना भागवत पढ़ना या महामंत्र का जो जप हो करना चाहिए उच्च स्वर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो लोग सुने हैं मेढकों का बोलना वो समझ सकते हैं कि इस तरह से उच्च स्वर से शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों को इस जीवन में ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, जीवन भर काम आते हैं, बल्कि दूसरे जन्म में भी काम आते हैं। पढ़ना चाहिए। आजकल का यह रिवाज है, फैशन है कि लोग शास्त्रों को मौन पढ़ते हैं। बहुत लोग तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते भी हैं तो चुपचाप पढ़ते हैं, पन्ना उलटते जाते हैं। तो इस तरह से पढ़ने का नियम नहीं है, वाणी का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि वह दिव्य शब्द है, तो वाइब्रेशन होना चाहिए। जप आदि में भी यही होना चाहिए, भगवान का नाम उच्च स्वर से बोला जाए शास्त्रों में, यह बात मेढक से सीखनी चाहिए। दर्दुर्स बोलते रहते हैं, कभी कभी तो बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। और कई सबके कंठ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न तरह से बोला करते हैं, लेकिन बोलते हैं। तो इसी तरह विद्यार्थी लोग छात्र लोग बोला करते हैं आचार्य की बात सुनकर, इस तरह पढ़ना चाहिए। यहाँ मेघ जो है वो आचार्य के स्थान पर है और विधक शिष्य स्थान पर है, छात्र स्थान पर, और वेद का उच्चारण उनका बोलना है। इसे भी सिद्ध होता है कि गुरु का या आचार्य का कर्तव्य है कि वो भोर में जगावे इन मेढकों को, जो चुपचाप पड़े हुए हैं उनको जगावे कि बोलो बोलो राम राम बोलो हरे कृष्ण करो। जगाना पड़ता है, स्कान के प्रत्येक सेंटर में घंटी बजती है सब रहता है, जगा देना चाहिए, क्योंकि तमोगुण में जीवन बेकार जाता है, व्यर्थ दिखता है। अपने बच्चों को भी जगा देना चाहिए जबरदस्ती, अपने घर पर, कोई जरूरी नहीं कि गुरुकुल में ही जगाया जाए, अपने घर पर माता पिता है बच्चों को जथा जो एक आध घंटा पहले जगा देना चाहिए, जगो 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 जगो, जग करो, जीवन बीत रहा है। और वेद का श्रीमद् भागवतम का इस तरह अभ्यास होना चाहिए वाणी पर, वाणी से पाठ करने से शास्त्र जल्दी याद हो जाता है, मन में पढ़ने पर याद नहीं होता है, वाणी से पढ़ने पर बहुत जल्दी याद हो जाता है। यह शिक्षा है कि वेद पढ़ना चाहिए, वर्षा काल के मेढकों से शिक्षा ली गई, अब नदियों से ऊपर है शिक्षा ले रहे हैं, छोटी छोटी नदियां वर्षा काल में अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके और इधर उधर बहने लगती है, आपने देखा होगा, और बाद में सूख जाती है, बाद में कील भी टूट जाती है नदियों की, पानी की धारा नहीं रह जाती। ऐसी बहुत सी नदियां मैं राजस्थान में देख, गुजरात में भी, इन दिनों कोई पानी नहीं है, और सुनते हैं कि बरसात के दिन में कई गांव डुबा दिया है। ऐसी नदियां होती हैं, तो कहते हैं आसन उत्पत्त वाहिन्या क्षुद्र नद्यो नुसुष्यति, क्षुद्र नद्य छोटी छोटी नदियां वर्षा काल में उत्पत्त वाहिनी हो जाती है, गलत रास्ते पर चलती है, जाना चाहिए अपने लीक में, अपने रास्ते पर, लेकिन ये इधर उधर गांव डुबाते हुए चलते, लेकिन जो ही वर्षा बंद होती कुछ ही दिन में अनुसूचित सूख जाती। गंगा आदि नदियां ऐसा नहीं करती, ऐसा वो सूख नहीं जाती, गर्मी के दिन में भी गंगा जी में काफी पानी रहता है। क्षुद्र नदियां, छोटी छोटी नदियों की बात की जा रही, जैसे पुंसो यथा स्वतंत्र से देह द्रविड़ संपदा, जो मनुष्य अस्वतंत्र है, मतलब परतंत्र है, किसके, इंद्रियों के, जो इंद्रियों के वश में रहता है वह क्षुद्र व्यक्ति है, और उसको कहीं कुछ पैसा मिला या जवानी चढ़ी या कुछ विद्या पढ़ा तो बस गलत रास्ते पर चलना चालू कर देता है, और कुछ ही दिन में जवानी खत्म, पैसा खत्म, ज्ञान खत्म, बस अनुसूचित, इसके बाद ठंडा हो जाता है। कुछ पैसा मिला, कुछ पद मिला, धन मिला, तो मनुष्य को मर्यादा में रहना चाहिए, बहुत संभाल करके रखना चाहिए, ये नहीं कि अब फ्राइडे को ये दिला पैसा मिला सब खर्च कर दो, अब फिर अब दूसरे फ्राइडे के लिए अब देखते हो ऋण कर्जा लेकर, इसको क्षुद्र नदी कहते हैं। जो मिला इधर खाओ, ये करो ये करो ये करो, इसके बाद फिर जाओ। इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, वो ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा आया तो उसको मर्यादा से रखे, ढंग से रखे, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इंद्रियों की मांग को कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, इनको बहुत देने की आवश्यकता नहीं है, काम भर दे करके काम चलाना है। तो जीवा कि मांग आप पूरी करते जाइए तो संसार के सारे होटल रेस्टोरेंट यदि एक आदमी को दे दिए जाए कि जो भी मन करे बना बना करके खाओ, जितने नौकर हैं रेस्टोरेंट में सब अलाउट कर दिया जाए, तब भी वो आदमी नहीं कहेगा कि अब मैं संतुष्ट हो गया। जिह्वा इस तरह से लोलुप हो जाती है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होती है, नहीं तो संतुष्ट हो सकने वाला व्यक्ति तो साधारण साधारण अन्न खा करके, घास पात खा करके संतुष्ट हो जाता है। संतोष से बहुत बड़ा भूषण है, इतने बड़े बड़े हाथी हैं वो किस रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, घास पात खा करके इतने बलवान है कि नहीं। संतोष से बहुत बड़ा भूषण है मनुष्य का, लेकिन यहां सुखदेव को स्वामी बता रहे हैं कि जो क्षुद्र मनुष्य होते हैं, छोटी बुद्धि के और खास करके अस्वतंत्र परतंत्र हैं, इंद्रियों के वश में रहते हैं और शास्त्र की मर्यादा को नहीं मानते, उनका देह, उनका द्रव्य और उनका संपद उनको उन मार्ग में ले जाता है। जैसे मान लीजिए देह है, जवानी में देह यदि बहुत अच्छा हुआ, तो ये नहीं है कि चलो भगवान का भजन करो, दान करो, धर्म करो, उनको देह को अब क्लब में ले जाएंगे और बस उत्पथ वाहिन में, उत्पथ में देह लग जाएगा, जवानी उत्पथ लग जाएगी, धन उत्पथ में, और बाद में सब खत्म। कुछ ही दिन जवानी खत्म, धन खत्म, बल खत्म, स्मृति खत्म, सब अनुसूचित इसको कहो। तो इससे है शिक्षा ले रहे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, इन क्षुद्र नदियों से सीखना चाहिए। और क्षुद्र नदियों को तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी उनमें दिसंबर तक रह पाता है, जनवरी चढ़ते ही सूखते, केवल बालू ही बालू रहते। और इधर जुलाई अगस्त सितंबर में गांव को डुबाया करते हैं, उत्पथ वाहिनी। चाहिए कि सालों भर पानी रहे और अपने ढंग से बहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अपने कर्मानुसार भगवान की कृपा से मनुष्य को देह, जवानी, धन, पद की प्राप्ति होती है, उसे बहुत मर्यादा में रखना चाहिए, शास्त्र के अंकुश में रखना चाहिए, ये शिक्षा है। हरिता हरिभि सस्तरिंद्र गोपैश्च लोहिता उच्छलिंद्र कृतक्षया नृणां शरीर को भूख। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरियाली रहती है, वर्षा काल में डूब भरे रहते हैं, कहीं कहीं नील वर्ण की घासें रहती हैं, कहीं हरित वर्ण के, कहीं कहीं लाल इंद्रगोप कीट रहते हैं, लाल लगते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की शोभा होती है जैसे राजा की चतुरंगड़ी सेना हो। कहीं कहीं बरसाती छत्ता निकलते हैं जमीन से, बरसाती छत्ता समझते हैं, हाँ कुकुरमुता कहते हैं, वो छत्ता जैसा जमीन से निकलता है उजला उजला, तो उजला लगता है। और इंद्रगोप कहते हैं एक लाल लाल कीड़ा होता है जिसके ऊपर मखमल जैसा दिखने लगता है, तीर बहुत है, फिर पावती। और हरी हरी घास और कहीं कहीं नीला, तो ऐसे लगता है जैसे किसी राजा की सेना हो। सेना में कई रंग के लोग रहते हैं, हाथियों का रंग दूसरा रहता है, घोड़ों का रंग दूसरा, और सैनिक अलग अलग प्रकार के झंडा रखते हैं, रथ रखते हैं। तो इस तरह पृथ्वी लगती है जैसे किसी राजा की सेना हो, चतुरंगड़ी सेना। क्षेत्राणी सस्य संपद भी कस्य कारणम् उदम् ददुः। और वर्षा काल में किसान, कृषक, कृषि करने वाले जब खेती करते हैं तो किसी किसी साल, किसी किसी वर्ष में उनके खेत सस्य संपद भी, फसल से समृद्ध हो जाते हैं, भर जाता है खेत फलों से, अनाज से। तो जब अपने खेत को देखते हैं किसान, इस साल बहुत अनाज होगा, बहुत अच्छा होगा, तो मुदम दू, उनको तो वे खेत आनंद देते हैं। लेकिन धनिना उपतापम भाई दैवाधीना मैं जानता हूं, मानिना उपतापम है, लेकिन जो धनी लोग हैं उनको बड़ा उससे दुख होता है कि अब ये किसान हमारे बस में नहीं रहेंगे, यदि इन्हें ठीक से पैदा नहीं होगा तब तो ये हमसे लोन लेंगे, ये करेंगे, हमारे अधीन रहेंगे, और अब तो इनको इतना पैदा हो गया कि अब हमारे अधीन नहीं रहेंगे। तो वो खेत धनियों को दुख देते हैं और कृषकों को आनंद देते हैं। शुरू से ही ये सब बातें आती हैं। धनी वर्ग नहीं चाहता है कि दूसरा व्यक्ति धनी हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी एक कैसेट में बोले, मैं सुना हूं कि जब हमारे देश में कोई वस्तु कोई बनाना चाहता था, जैसे टाटा का कारखाना खोलना हुआ लोहे का, तो अंग्रेज कहते थे नहीं, यहां कोई भी चीज ये लोग अच्छा बना नहीं सकते, घटिया किस्म का बनाएंगे, इसलिए कोई चीज बनाइए मत, हम लोग इंग्लैंड से बनाकर सब चीज लाएंगे। और कहते थे कि हम लोग इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे क्या बढ़ाना चाहते हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले रेल की पटरी ट्रैक इंग्लैंड से गया था भाई, रेल की पटरी, और तो छोड़ दीजिए। गांधी जी ने जब विरोध किया तो सबसे पहले उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, वो भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसके एडवांस बनाना चाहते थे। यही है अनादि काल से जीवों की स्थिति। गरीब को कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब ऊपर उठे, ये हमेशा हमसे कर्जा लें, लोन लें, ऋण लें और ऐसे ही हमारा दास बनेगा, खास करके किसानों को। और लोगों में यूनियन बन जाती है, किसानों में बनती नहीं है। आज भी देखा गया है खेती कितना महंगा पड़ता है भारत में, कितना परिश्रम करना पड़ता है, वही जीवन दे रहे हैं। अनाज देना मतलब दूसरों को प्राण देना, ये लोहा लाकड़ी खाकर आदमी क्या करेगा? और लोग जो नट बोल्ट बना रहे हैं, इससे क्या जीवन में फायदा होगा? ये फर्नीचर वो फर्नीचर, यदि अनाज न हो, अन्न न हो तो मर जाएंगे सब। जो दल अन्न उत्पन्न कर रहा है उसको सदा दूसरे लोग अधीन रखना चाहते हैं अपने। तो यहां सुखदेव गोस्वामी जैसा विरक्त व्यक्ति बोल रहा है कि किसान एक सस संपद भी क्षेत्राणी, फसलों से भरे हुए खेत कृषकों को आनंद दे रहे थे और धनियों को या मानियों को वे अनुताप दे रहे थे, उनको दुख दे रहे थे, वो देख करके मर रहे थे। ये कैसे इस साल इतना पैदा हो गया, ये हो गया, लेकिन दैवाधीन मैं जानता हूं। असल में वो मूर्ख हैं जो नहीं जानते हैं कि सारा जगत दैव के अधीन है। किसी किसी साल पैदा बहुत हो जाता है, दैव के अधीन है सारा जगत, कर्मानुसार हो जाता है। अथवा इसका एक अर्थ ये भी है कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो खेती को हीन समझते हैं, खेती नहीं करते हैं, खेत छोड़ देते हैं, ऐसे प्रति खेत छोड़ देते हैं और सत्य पैदा नहीं हो रहा है, क्या मेहनत करे, छोड़ देते हैं। लेकिन कोई खेती कर दी है और उनके खेतों में बहुत सुंदर पैदा हो गया है, तो जो खेती नहीं किए हैं वो देख करके चलते हैं कि उसको तो इस साल बहुत पैदा हुआ, हम तो गए। तो दैवाधीनम अजानता, वो जानता नहीं था कि सारा पैदा होना ना पैदा होना दैव के अधीन है। इसीलिए अपना काम तो करना चाहिए ना, काम करता आदमी किसी किसी साल बहुत पैदा हो जाता है, किसी साल नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी शहरों में तो घूमते नहीं थे, वो तो हमेशा गांव में देहात में घूमते थे, इसीलिए गांव की ही बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत समझने की अधिक योग्यता उन लोगों में होती है जो गांव में रहते हैं, शहर वाले इसको उतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। आप बुरा मत मानिए, क्योंकि सारे उदाहरण आए हैं इसमें गांव के, है ना? गांव के उदाहरण आते हैं रियली। अब कहते हैं कि जलस्थल कसा सर्वे नौ बारी निषेवया और विभ्रम रुचिरम रूपम जथा हरि निषेवया। नए नौ बारी निषेवया, नए जल का सेवन करके जल में रहने वाले जीव और स्थल में रहने वाले जीव, ये सब रुचिरम रूपम अभिभ्रम बहुत सुंदर लगते हैं वर्षा काल में। नए पानी का सेवन करके वृक्ष भी बहुत सुंदर हो जाते हैं, जल में रहने वाले या थल में रहने वाले जीव सब। जल में रहने वाले जैसे मेढक आदि देखे हैं आप बरसात में, वो पीला पीला बहुत सुंदर लगते हैं, है ना? लगता है विदेश से लौटे हुए आदमी जैसे लगते हैं। मैं भारत में रहकर बोल रहा हूं। तो बरसाती मेढक बड़े बड़े और पीला पीला निकलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। दूसरे दिन में छोटे छोटे काले काले रहते हैं, बरसात में बहुत सुंदर लगते हैं नए पानी का सेवन करके। और भी गायें भी तंदुरुस्त हो जाती हैं खाती करके। तो नौ बारी निशे हो या नए जल का सेवन करके सब बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीव हरि निशे हो या भगवान कृष्ण की सेवा करने पर सुंदर लगने लगता है। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा है। ऐसे कुछ भी जीव को आप सजाइए, गहना पहनाइए, कुछ भी धन हो जाए, लेकिन रियली वह सुंदर नहीं लगता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने पर कोई भी जीव बहुत सुंदर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वह जीव का स्वरूप है, और परम सुख स्वरूप है। जीव का यही सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण की भक्ति करना, प्रेम करना, और वह भक्ति सुख स्वरूप है। जो जीव सुख पाने लगता है, जो लोग भक्त हैं, जप करते हैं, अपने घरों में ठाकुर को रखते हैं, वो इसका अनुभव करते हैं कि वास्तव में भगवान के पास बैठ करके, भगवान का नाम जप करके या उनका ग्रंथ पढ़ करके जो सुख मिलता है वो संसार के अन्य किसी वस्तु से नहीं मिलता है। ये सबका कुछ न कुछ अनुभव होगा। तो भगवान का भक्त होने पर, हरि की सेवा करने पर जीव सुंदर लगना ही लगता है। हम लोग देखते हैं खास करके विदेशी भक्तों को, जो लोग भक्त नहीं है वो बहुत कुरूप लगते हैं, बेढंगा केस रखना और सब का, लेकिन जो भक्त हो जाते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, तिलक करके, कंठी बांध के, है ना, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कोई भी किसी भी देश में कोई भी प्राणी हो, भगवान के साथ संबंध होने से वह रुचिर लगने लगता है, अच्छा लगता है। सुखदेव गोस्वामी कम से कम अपना विचार दे रहे हैं, उनके दृष्टि में ऐसा लगने लगता है। जथा हरि में सेवया, भगवान की सेवा करने से जीव अच्छा लगता है, क्योंकि जीव का वही असली कर्म है भगवान के संपर्क में आना, तो सुंदर लगने लगता है। सरिद्धि संगता सिंधु चुक्ष भेष स्नोर निमान अपक्व योगिनश चित्तम कामात्म गुणयुग जथा। अब कह रहे हैं कि वर्षा काल में नदियों में बहुत पानी हो जाता है और उन नदियां अपने जल को जब समुद्र में ले जाती हैं, नदियां समुद्र में गिरती हैं, तो जहां वे गिरती हैं समुद्र में, किसी पहाड़ के ऊपर से आती हैं या कहीं से, तो समुद्र में क्षोभ पैदा होता है, चुक्षुभ है, क्षोभ पैदा होता है, वहां आवाज होती है और बहुत सी लहरें बनती हैं पानी के गिरने से। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अपक्व योगी का कामाक्त चित्त गुणों का संयोग होने पर क्षुब्ध हो जाता है, विचलित हो जाता है। समुद्र इतना महान है लेकिन फिर भी नदी का संयोग होने से वहां पर डिस्टर्ब होता है। नदी उसकी पत्नी मानी जाती है समुद्र, इतना बड़ा गंभीर व्यक्ति और नदी का संयोग होने से वहां क्षुब्ध हो जाता है। इसी तरह से जो योगी अपक्व चित्त है, अपक्व है माने कच्चा है, जो कच्चा योगी है, अध कचरा है, अभी साधन कर रहा है लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके हृदय में अभी अभी काम है, तो गुण युग गुणों का संयोग होने पर, इंद्रियों से विषयों का संयोग होने पर उसका मन क्षुब्ध हो जाता है, वो विचलित हो ही जाता है। बाहर से देखने में कितना भी बड़ा मंडलेश्वर हो, चाहे सन्यासी हो, कुछ भी हो, है कि नहीं, यदि विषयों से उसका संयोग हुआ तो उसमें क्षोभ होगा ही। इसीलिए इंद्रियों को विषयों से बचाकर रखना चाहिए, आंख को रूप से, कान को शब्द से, जिह्वा को रस से, स्पर्श को, त्वग इंद्रिय को स्पर्श से, नासिका को गंध से। आजकल लोग सिद्धांत बनाए हैं कि नहीं 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 नहीं, कहीं कुछ भी करो बस मन लगा रहेगा ब्रह्म में, भगवान में, कैसे लगा रहेगा। इंद्रियों का विषयों से चिर परिचय है अनादिकाल से, थोड़ा भी संयोग मिलने पर इंद्रियां चली जाती हैं उधर, थोड़ा, इसीलिए कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। जब समुद्र जैसा गंभीर व्यक्ति नदी का संयोग होते ही क्षुब्ध हो जाता है, तो फिर अन्य योगी की बात ही क्या है। इसलिए अपक्व योगी के हाल कहा है, जो पक्का योगी नहीं है, अपक्व तब होना, अभी सिद्धि को नहीं प्राप्त किया है, अभी साधक है, तो उसका चित्त गुणों से युक्त होने पर, विषयों से युक्त होने पर क्षुब्ध हो जाता है, जैसे समुद्र क्षुब्ध हो जाता है नदियों का संग मिलने। नदी का संग नहीं होता है, मान लीजिए कोई नदी सूख गई है गर्मी के महीने में, तो वहां पर समुद्र बिल्कुल शांत रहता है, जब ही पानी आएगा तो वहां पर हलचल हो जाएगी पानी के गिरने से, तो समुद्र का उत्सव कहा जाएगा। तो इसी तरह से वास्तव में कोई भी व्यक्ति शांत रह सकता है, लेकिन जब इंद्रियों का संयोग इंद्रियों के विषय से होगा तो चित्त चंचल हो ही जाएगा, शांत रह नहीं सकता। इसी से कभी कभी प्रयास करना चाहिए कि इंद्रियां विषयों का संग न करें। कभी भगवान के पास बैठ करके जप करें, अपने घर में ठाकुर जी का मंदिर है सबके घर में, बैठे वहां जप करें, उसमें कुछ सुने ना बोले और दूसरी बात ना बोले। तो अपने चित्त को इस तरह अभ्यस्त करना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए, आधा घंटा एक घंटा 15 मिनट प्रतिदिन भगवान की पूजा में लगा रहे, ये लगा रहे, वो लगा रहे, तो चित्त धीरे धीरे अभ्यस्त होता जाता है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं अध्यात्मवादी जो कहते हैं कि नहीं नहीं कहीं भी घूमो कहीं भी रहो जनक जी जैसा तुम ठीक रहोगे। ठीक कैसे रहोगे? और वो लोग कहते हैं नहीं भगवान की पूजा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर से पूजा में लगना जरूरी है, इंद्रियों को इंगेज करना चाहिए। हमारे हाथ की आदत है काम करने की, आदत है देखने की, तो भगवान का ड्रेसिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अपने घर में तिलक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हाथ लगा है, आंख लगी है, कुछ टेप्स रिकॉर्डर से सुन रहे हैं गीत, तो कान लगा है, तो जीवन में एक घंटा दो घंटा अगर ऐसे बीत रहा है तो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है चित्त के लिए। और अंततः चित्त को ही भगवान में लगाना है, वो लगेगा जब इंद्रियां लगेंगी, इंद्रियां नहीं लगेंगी तो नहीं लगेगा, अगर इंद्रियां विषयों में लगेंगी तो चित्त विषयों में चला जाएगा, ये निश्चित है। आप सबका अनुभव, मान लीजिए आप मंदिर में हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान में मन लगा है, जो ही हम परिवार में जाते हैं अपने बच्चे को देखते हैं और सब देखते हैं, तो जैसे आंख उन विषयों से संजोग करती है तो फिर बच्चे के सुख दुख के बारे में चित्त सोचने लगता है, उससे प्रभावित हो जाता है क्षण क्षण में। अभी हम लोग बैठे हैं, कोई कह दे सांप आ गया और सचमुच सांप आ जाए, एक तो कान ने सुना सांप शब्द और आंख भी देख ली तो चित्त भयभीत हो जाएगा निश्चित। यह है विषयों का संजोग। तो ये सीखने की बात है कि इंद्रियों को विषयों से बचाए रखना चाहिए, तब हम ठीक तरह से अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर है उदाहरण है। अब वर्षक अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। गिरयो वर्ष धारा भीर हन्यमानान विद्यथो अभिभूयमान व्यसनय जथा धोक्षज चेतसः। पर्वतों पर कितनी भी वर्षा होती है, वर्षा की धारा गिरती है, बूंदे गिरते हैं कुछ भी, और बूंदे गिर करके धारा का रूप लेती हैं, पर्वत पर आघात होता है, गिरती है, लेकिन पर्वतों को उससे कोई दुख नहीं होता है कितना भी पानी गिरे। इसी तरह से जथा अधोक्षज चेतसः, जिनका चित्त अधोक्षज में है, भगवान कृष्ण में है, वो किसी प्रकार का संकट आवे, रोग आवे, बाधा विघ्न आवे, कुछ भी हो, लेकिन उनका चित्त व्यथित नहीं होता है। भगवान में जिनका चित्त लगा है उनका किसी भी विपत्ति से मन दुखी नहीं हो सकता है। जैसे पर्वत पर कितना भी पानी बरसे लेकिन पर्वत दुखी नहीं होता है, उसे कोई क्षति नहीं होती, बल्कि पर्वत और शुद्ध हो जाता है, वर्षा हो जाने से वो साफ हो जाता है, पत्ते बह जाते हैं, धूल बह जाती है और चमकने लगता है। तो भक्त वास्तव में विपत्ति आने से और अधिक चमकता है, न कि वो दुखी होता है। देखा गया जैसे पांच पांडव, पांडव एक दिन राजा थे भारतवर्ष के, पूरी पृथ्वी के, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राज छोड़कर वन में जाना पड़ा, अपने सामने और छल से हराया गया था उनको जुआ में, पर छोड़कर चले गए और वन से लौटे तो और तेजस्वी होकर के लौटे, कुछ और नया उत्साह लिए, नस नस में तेज प्रवाह लिए, तेज था पांडवों में। भोग से आदमी मलिन हो जाता है और त्याग से उसमें तेज बढ़ता है, यह निश्चित है, यह सत्य है। तो मनुष्य को विपत्तियां और संकट ही उसको महान बना देते हैं। यदि भगवान का भक्त है तब तो देखता नहीं, और भक्त के लिए क्या विपद है क्या संपद है। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है। वो तो बहुत शोक नहीं करता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। भगवान के रूप सौंदर्य माधुर्य आदि में उसका मन निमग्न रहता है, दुनिया में कुछ भी होता रहे कभी व्यथित नहीं होता। ऐसे कई भागवत में उदाहरण है, भक्त विभक्तियों से व्यथित नहीं होता, जैसे वर्षा की धाराओं से पर्वत की कोई क्षति नहीं होती। कितनी बार वर्षा हुई होगी, कितनी वर्षा, लेकिन पर्वत जीव करते है ना। वर्षा की धाराओं से पर्वत दुखी नहीं होता है, बल्कि और चमकने लगता है। इसमें विपत्ति आने पर भक्त और तेजस्वी होता है, उसी समय पर उसकी परीक्षा होती है। वास्तव में विपत्ति आने पर ही वास्तविक परीक्षा होती है कि यह कृष्ण का रियली भक्त है कि नहीं। किसी भी दशा में भक्ति नहीं छोड़ता है, और भले छूट जाए कुछ भी, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं छूट सकते। एक पद है ब्रजभाषा में, गोपीजन कहते हैं कि सब कुछ छूट जाएगा लेकिन कृष्ण नहीं छूट सकते। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया पर कन्हैया नहीं तजे। बाप छूट जाएगा छूट जाएगा, ससुर छूट जाएंगे छूट जाएंगे, माई छूट जाएगी ठीक है, सब छूट जाएंगे कन्हैया नहीं छूटेगा। एक बहुत बड़ा पद है, उसके अंत में लिखा गया, लोक छूट जाएगा, परलोक छूट जाएगा, स्वर्ग छूट जाएगा, स्वजन छूट जाएंगे, कुछ भी छूट जाए, इज्जत छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, कृष्ण नहीं छूट सकते किसी भी दशा में। तो ये भक्तों का निश्चय होता है, कुछ भी हो जाए विपत्तियां तो आती ही रहेंगी। कई तरह की विपत्तियां आती रहती, कभी शरीर में रोग आता है, रोग से लगता है कि वो अब भक्ति छूट जाएगी, और भगवान ने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, विपत्ति दे दे करते हैं, तो टेस्ट करते हैं कि इस समय अब इसका मेरे प्रति क्या विचार है। कुछ लोग तो कहते हैं क्या कृष्ण के भक्त बने हो कि इतना दुख भोग रहे हो, क्या है कृष्ण में तो नहीं आते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, भागवत में लिखा गया है कि जो भक्त धन से बिगड़ सकता है उसी का धन छीनता है, सबका नहीं। ये वहां लिखा गया है सब, देखते हैं भगवान की इस धन से ये उन्माद में आ जाएगा, ये भोगों में पड़ जाएगा, गिर जाएगा, और भक्त है तो उसका छीन लेते हैं, दूसरे का नहीं छीनेंगे, और भक्तों का भी नहीं छीनेंगे, और श्रेष्ठ भक्तों का भी नहीं छीनेंगे, क्योंकि दिए ध्रुव महाराज को दिए, प्रहलाद महाराज को दिए, युधिष्ठिर महाराज को दिए, अम्बरीश महाराज को राज दिए, सबको दिए हैं, और कई भक्तों को देते रहते हैं, सुदामा जी को दिए, लेकिन देखते हैं कि इस धन से ये बिगड़ने वाला है तो छीन लेते हैं। ये उनकी कृपा है, वास्तव में डरना नहीं चाहिए। जितना जरूरी है प्रभु देंगे, वो सब जानते हैं कि इसको कितनी आवश्यकता है, और हम अपनी आवश्यकता को उतना नहीं जानते हैं जितना कृष्ण जानते हैं। वास्तव में छोटा सा बच्चा अपने माँ के गोद में है, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या कपड़ा ओढ़ेगा, आगे क्या, वो अपनी आवश्यकता को स्वयं नहीं जानता है, लेकिन माँ पूरा पूरा जानती है कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है ना। वो सब जानते हैं, इसी तरह से कृष्ण वास्तव में जानते हैं, और गीता में कहते भी हैं कि मैं अनन्य रूप से चिंतन करने वालों का, मेरा भजन करने वालों का योग से मैं वहन करता हूं। ऐसा कौन कह सकता है, कोई है दुनिया में कहे कि मेरा नाम जप करो और मैं तुमको मेंटेन करूंगा, कोई है कहने वाला? लेकिन कृष्ण तो ऐसा साफ कहते और कर रहे हैं। कितने भक्त हैं दुनिया में, करते क्या है, केवल नाम जप करते हैं और उनको कृष्ण मेंटेन कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? तो अनन्य रूप से यदि चिंतन करें, सेवा करें, भजन करें, तब तो योगक्षेमम बहाने। योगम का अर्थ होता है जुगाड़ करना, जो नहीं है उसको जुटाना, इसको योग कहते हैं। जो नहीं है उसको लाऊंगा और जो है उसको बचाऊंगा, क्षेमम कहते हैं उसको। वाह, योगक्षेमम बहाने। ये भगवान अपने मुख से कहते हैं। वास्तव में समर्थ है, कृपालु है सब तरह से। तो भक्त को विश्वास होना चाहिए किसी भी अवस्था में संकट आएगा आता रहा। कभी ऐसा होगा कि अपने घर में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति से बिछोह हो सकता है, उसका मरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धन हानि हो सकती है, मान हानि हो सकती है, शारीरिक रोग हो सकता है, कई प्रकार के संकट, ये तो दुखालयम है ही, लेकिन भगवान ने से चित्त नहीं हटाना चाहिए। भगवान में जिसका चित्त लगा है वो कभी न दिव्यत हो, कभी दुखी नहीं होते हैं, हमेशा आनंद रहते हैं। अब देखिए भागवत या गीता नहीं पढ़ने वालों पर ये बात आ रही है, सोचते आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लापरवाही करते हैं, उनके विषय में एक उदाहरण आ रहा है। मार्गा बभूव संदिग्धा तृण छन्ना या संस्कृता नाभ्यस्य माना सत्य द्विजय काल हता इव, द्विजयी न अभ्यस्य माना, जो द्विज, द्विज का हम भक्त लेना चाहिए, जो लोग अभ्यास नहीं करते हैं शास्त्र का, तो धीरे धीरे शास्त्र काल हता है, विस्मृत हो जाता है, काल के द्वारा विस्मृत होते 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 भूल जाता है। एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे वर्षा काल में जो रास्ते होते हैं गांव में वो सब धीरे धीरे छन्न हो जाते हैं, घास उगती जाती है और चलना फिरना बंद हो जाता है। गर्मी के दिन में तो चारों तरफ रास्ता लग जाता है ना, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, रास्ता हो जाता है, रास्ता बिल्कुल चिकना हो जाता है, लेकिन वर्षा काल में अब लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, इसको कहते हैं अभ्यास नहीं रहा और घास बढ़ती जाती है। तो मार्गा बभोगु संदिग्धा, रास्ता सब संदेह में पड़ जाते हैं कि रास्ता जाएगा कि नहीं जाएगा, घास भर गई और आदमी का चलना आना, चलना या जाना आना रहा नहीं, तो संदेह हो जाता है, अच्छा से रास्ता पता नहीं चलता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ब्राह्मण या कोई विद्यार्थी साधक ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दे, न अभ्यास करे, तो काल बीतते बीतते धीरे 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 उससे सब विस्मृत हो जाए, याद नहीं रहता। ये सबके साथ सत्य है कि नहीं? ये रास्ता पर चलते रहना चाहिए, चलते रहने से घास मरती रहेगी, रास्ता क्लियर रहेगा, है ना? तो यहाँ बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पढ़ने का अभ्यास रहना चाहिए पढ़ने का, और सवेरे नहीं पढ़ सके तो शाम को पढ़िए। ऐसा मैंने सुना है, सवेरे घर बहुत जल्दी लोग चले जाते हैं सर्विस पर काम पर, तो दूसरे समय में पढ़ें, लेकिन निश्चित पढ़ना चाहिए। तो 10 श्लोक 5 श्लोक जितना भी पढ़ सके, एक अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे भोजन रोज करते हैं वैसे रोज शास्त्र पढ़ना चाहिए। और ऐसा यदि अभ्यास रहेगा तो आगे चलकर सारे श्लोक याद हो जाएंगे। याद करने से श्लोक याद नहीं होते हैं, पढ़ने से अपने आप याद हो जाते हैं। और याद करने के लिए यदि आप पढ़ेंगे तो आज याद करेंगे 10 दिन के बाद भूल जाएगा, चाहे 2-4 दिन नहीं भूल जाएगा, लेकिन पढ़ने से जो याद होता है वो जीवन भर नहीं भूलता है। हमको श्रीमद् भागवत के कई हजार श्लोक याद है, लेकिन सब पढ़ने से याद है, याद करने से नहीं है। पढ़ते पढ़ते पाठ करते 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 वो याद हो गए, और चूंकि हम लगे हुए हैं इसमें फिर बारंबार उसका अभ्यास है, पढ़ते रहते हैं, इसलिए भूल नहीं पाते। इसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। अब शिक्षा दे रहे हैं, लोक बंधुसु मेघेशु विदितश्चल सहृदा स्थैर्य में चक्रु कामिन्या पुरुषेषु गुणेषु। मेघ को लोक बंधु कहा गया है, बादल लोक बंधु है, जीव का लोक का उपकारी है कि नहीं? जीवन बरसाता है, यदि वर्षा न हो इस पृथ्वी पर तो वास्तव में कोई नहीं जी सकता है। तो जीवों के वास्तविक बंधु हैं बादल, मेघ, तो बहुत गुणवान है, उनमें स्नेह है। लेकिन ऐसे बादलों से भी बिजलियां या बिजली प्रेम नहीं करती है। यहां चक से चमकती है तो फिर वहां जाकर चमकती है, वहां चमकती है। सुखदेव को सब उदाहरण दे रहा है कि विद्युत चल सौहृदा, ये जो बिजलियां हैं ये चल सौहृदा, इनका जो सौहार्द है प्रेम है बादल के साथ चल है। जब एक बादल के साथ चमकी है तो वही चमके है कि नहीं, लेकिन ये डाइवर्स करना, इधर से उधर जाना, ये करना, बिजली बिजली को एक ही मान करके चंचल कह रहे हैं कि यहां रहती है तो फिर वहां चमकती है, वहां चमकती है। ऐसे गुणवान बादल के साथ रह रही, इतने महान बादल के साथ जो लोक बंधु है, लोक हितकारी है, पर ऐसे महान बादल के साथ भी बिजली का जो सौहार्द है प्रेम है वो चल है, चंचल है। ठीक वैसे ही जैसे इस जगत में गुणवान पति से भी कामनी स्त्री प्रेम नहीं करती है, उसका मन इधर उधर जाता रहता है। देखिए उदाहरण दिया जाए, विरक्त चूड़ामणि सुखदेव को स्वयं उदाहरण दे रहा, स्थैर्य में चक्र कामिन्य पुरुषे सुगुणी शिव। ये जगत में उदाहरण है वास्तव में, यह किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, स्वभाव बताया जा रहा है। पुरुषे सुगुणी शिव, बहुत से ऐसे पुरुष हैं वास्तव में गुणवान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, पर ऐसे गुणवान पुरुषों से भी स्त्रियां अचल प्रेम नहीं कर पाती हैं, उनका मन नए नए प्रेमी की तरफ भागता रहता है। जो भी आजकल के युग में अगर कोई स्त्री ऐसे सुने तो कहे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ऐसा या छेप जैसा कर रहे हैं, लेकिन वो तो स्वभाव बोल रहे हैं और सभी स्त्रियों के लिए नहीं कह रहे हैं। प्रेम नहीं करती है, पति से प्रेम नहीं है, केवल अपना खान पान श्रृंगार केवल उसे चाहिए उसे, तो इसको कामिनी कहते हैं। तो कामिनी स्त्रियां गुणवान पति से भी प्रेम नहीं करती, उनका मन इधर से उधर होता रहता है। तब यहां शिक्षा क्या है, शिक्षा ये है कि ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए, यहां शिक्षा ये है। तो सुखदेव को हम खूब देखे होंगे बिजली का चमकना इधर से उधर, तो आज इस पति के साथ पुरुष के साथ तब तक दो महीने के बाद पता चला कि उसके साथ घूम रही है, ये क्या तमाशा है। स्त्री को भगवान ने इसलिए बनाया है कि वह एक पति के साथ अचल रहे, अचल रहे। और किसी नारी को जब आशीर्वाद दिया जाता है, जो शास्त्र में हम पढ़े हैं, उसको आशीर्वाद दिया जाता है तो यही आशीर्वाद दिया जाता है, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा अहिवात अचल रहे, मतलब तुम्हारे पति बहुत दिन तक जीवित रहे और उनके साथ तुम रहो, यही आशीर्वाद स्त्री के लिए सबसे बड़ा होता है। हम लोगों का तो स्वभाव है, हम लोग यही आशीर्वाद देते हैं। तो स्त्री की शोभा, स्त्री की पवित्रता इसी में है कि वह पति के साथ हो, निश्चित समझ लेना चाहिए। ऐसे तो प्रश्न भी आते रहते हैं कि यदि पति शराबी हो, ये हो, वो हो, दुराचारी हो तो क्या करना चाहिए, तो वास्तव में अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है शास्त्रों में नियम, लेकिन जनरल रूल यही है कि स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए किसी भी हालत में। यहां तक कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि पति रोगी है और निर्धन है और भी कई प्रकार के उसमें दोष हैं, फिर भी पति की सेवा स्त्री को नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा पति की सेवा उसे करनी चाहिए। ऐसे पति की सेवा करने से भी वह उच्च लोक में जाती है। आजकल इस जगत में इस बात को सिखाने की आवश्यकता है, इस धर्म को, लेकिन स्त्रियों को ये बात न सिखा करके उल्टे उनको और अधिकार सिखाया जा रहा है, तुम्हारा ये राइट है, तुम्हारा ये राइट है, उसका सबसे बड़ा राइट है पति की सेवा करना है, अपने इस राइट का प्रयोग क्यों नहीं करती है अपना ये राइट तो लेना चाहिए ना। अगर वो चरण दबाने चले पति का, पति न दबाने दे तो केस करे सरकार से कि चरण नहीं दबा अपने राइट के लिए, इसकी क्या राइट है वास्तव में, इसको अधिकार कहते हैं। ये बहुत बहुत शिक्षाएं हैं शास्त्र में, ऐसे तो हमको यहां समय नहीं है कि मैं बहुत व्याख्या कर सकूं, लेकिन एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो वर्षा काल का वर्णन चल रहा है, शरद काल आएगा, लेकिन शरद काल के वर्णन में इससे भी अधिक श्लोक दिए गए हैं। अब देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत आ गया है। वो सिद्धांत यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान जब इस जगत में आते हैं तो माया में बंध जाते हैं, अपनों से परे रहते हैं, अपने धाम में जैसे रहते हैं वैसे ही इस जगत में भी रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो एक उदाहरण से समझाया जा रहा है, धनुर्वियति माहेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यभा व्यक्ते गुण व्यति करे अगुणमान पुरुषो जथा, अगुणमान पुरुषो जथा। जैसे आकाश में महेन्द्रम धनु, महेन्द्र का धनुष उगता है, इंद्र धनुष आप सब देखे हैं ना, इंद्र धनुष रेनबो, रेनबो इंद्र धनुष, भगवान इंद्र का धनुष है बहुत लंबा धनुष है, लेकिन उसमें गुण नहीं है, गुण में रस्सी जो उसके छोर पर रस्सी होती है वो नहीं रहता है उसमें, धनुष है लेकिन कैसा है निर्गुणम, ज्या रहित है, उस रस्सी को ज्या कहते हैं, उसमें रस्सी नहीं है वो निर्गुण है, साथ इस जगत में वो धनुष है लेकिन गुण नहीं है, है गुणिनी बियती, बियती बियत कहते हैं आकाश पर, बियती मैंने आकाश में, वो है आकाश में धनुष है, आकाश कैसा है गुणिनी, गुणमय आकाश है, गर्जित शब्द वाले आकाश में है, आकाश में बादल है, ऐसे गुणमय आकाश में इंद्र धनुष निर्गुण है। तो इसी तरह से गुण व्यति करे, जब गुणों में क्षोभ पैदा होता है, जगत की सृष्टि होती है, तो पुरुष गुणातीत भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आकर के पुरुषावतार लेकर के या लीला अवतार लेकर के भी निर्गुण ही रहते हैं, प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं हो जाते, आते हैं इस जगत में गुणमय जगत में लेकिन वे रहते हैं निर्गुण, निर्गुण का निराकार नहीं हुआ है, निर्गुण का अर्थ है सत्व रज और तम इन तीन गुणों से परे रहते हैं, ये अर्थ है। कितना सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, गुणमय आकाश में इंद्रधनुष निर्गुण है, उसी तरह से इस गुणमय जगत में माया जगत में भगवान मायातीत रहते हैं, यदि वही इसकी सृष्टि करते हैं, सृष्टि करके फिर बीच बीच में अवतार लेते हैं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति तब तो अवतार लेते हैं, लेकिन वे अपने स्वरूप में रहते हैं निर्गुण रहते हैं, प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं रहता है, प्राकृत जगत में लेकिन अप्राकृत। मैं इस श्लोक पर एक घंटा बोला हूं, वो रिकॉर्ड हुआ है वृंदावन मंदिर में, और बहुत समय था उस समय और बहुत तरह से समझाने की आवश्यकता थी, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान कृष्ण पर यह श्लोक है कि इस जगत में आते हैं तो फिर भी अपने स्वरूप में रहते हैं, हम लोग अपने स्वरूप में नहीं है, हम लोग इस तरह के सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अब एक और देखिए, अब जीव का वर्णन कर रहे हैं एक एक उदाहरण से, इसमें भगवान का वर्णन हुआ, अब जीव का वर्णन देखिए, न राजो दुपच्छन्न सजस्ना राजितय घनई अहम मत्या भाषितया स्वभाषा पुरुषो जथा। जब रात्रि के समय आकाश में बादल छाते हैं वर्षा काल में तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु चंद्रमा के कारण बादल कुछ चमकते दिखाई देते हैं, वो बादल ऐसे नहीं दिखाई देंगे रात में लेकिन चंद्रमा के कारण वो दिखाई देते हैं, चंद्रमा ऊपर रहता है तो चंद्रमा की किरणों से बादल कुछ कुछ उजले लगते हैं, चमकते हैं, पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। देखिए किस तरह से इस उदाहरण को बैठाएंगे, न राज उडुप, उडुप माने चंद्रमा, उडु कहते हैं तारा को, प माने पालन करने वाले, तारा का पालन करने वाले चंद्रमा है। तो चंद्रमा न राज क्यों, छन्न छन्न रहते हैं, ढके रहते हैं, किससे, घनई घनों से, बादल से ढके रहते हैं चंद्रमा, दिखाई नहीं पड़ते हैं, अपने वास्तविक रूप में सुंदर लगते नहीं। कैसे घनों से ढके रहते हैं, स्वज्योत्सना राजित है, अपने ही प्रकाश से विराजित, घन द्वारा ढके रहते हैं। घन का विशेषण दे रहे हैं राजित है, स्वज्योत्सना, चंद्रमा की ज्योत्सना से बादल चमकता है, उजला लगता है, अच्छा लगता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन वह बादल चंद्रमा को ढके रहता है, जबकि चंद्रमा उस बादल को प्रकाशित कर रहा है और स्वयं दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से ठीक वैसे जैसे जीव इस शरीर में रहता है लेकिन इस शरीर से ही ढका है और शरीर में वो खुद चेतना दे रहा है, शरीर में जो प्रकाश या चेतना आ रही जीव के कारण आ रही है, जीव के कारण शरीर चेतन है लेकिन शरीर से ढका हुआ है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। यदि कोई चाहे तो पता लगाना चंद्रमा है कि नहीं, तो बादलों की सत्ता ही बता रही है कि चंद्रमा है, अगर चंद्रमा नहीं रहे आकाश में तो बादल चमकेगा नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बादल की ओट में चंद्रमा है, इसको सिद्ध स्वयं बादल करता है, बादल का चमकना विभ्राजित होना सिद्ध करता है कि चंद्रमा है। इसी तरह से इस शरीर में चेतना का संचार होना, हाथ का हिलना, आंख का देखना, बोलना, सुनना, ये सब इस शरीर ही प्रमाणित कर रहा है कि इसमें एक चेतन तत्व है, एक जीव है, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, इस शरीर के कारण ही दिखाई नहीं दे रहा है। इस शरीर को वही चला रहा है लेकिन इसी शरीर से वो ढका हुआ। अहम मत्याभासितया, इस शरीर को कहता है मैं हूं, शरीर में चेतना दे रहा है लेकिन इस अहम मति से ढका हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में जीव कब शरीर से खुल करके आउट होगा, अपने स्वरूप में होगा, जो वही बादल यदि हट जाए तो चंद्रमा चमकने लगता है रात में खूब अच्छी तरह से। तो जीव इस तरह से कृष्ण का नित्य दास है लेकिन इस शरीर में अहम बुद्धि करके इसके से ढका हुआ है, जबकि इसको खुद उजागर कर रहा है, इसको चमका रहा है। यह श्लोक बहुत सुंदर है, इसके पहले वाला श्लोक भगवान का वर्णन करता है और यह श्लोक जीव का वर्णन करता है। बहुत विचारणीय श्लोक है, वास्तव में हम तो बहुत जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं और बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन आप लोग इन श्लोकों को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत प्रीसिंग के लिए उपाध्याय हैं और समझने के लिए स्वयं, क्योंकि बिना दृष्टांत के लोग बातें समझ नहीं पाते हैं, जब तक दृष्टांत नहीं दिया जाता है तब तक बात मन में धस नहीं पाती। तो जीव किस तरह अहंकार से ढका हुआ है परंतु अहंकार को वही प्रकाशित कर रहा है, ये बादलों के उदाहरण से और चंद्रमा के उदाहरण से समझना चाहिए। और वर्षा काल में रात्रि में कभी कभी इस श्लोक को देखकर आकाश की ओर देख करके विचार करने को ठीक, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चंद्रमा के कारण बादल चमकता है लेकिन बादल ढका है चंद्रमा को, जिसके कारण चमक रहा है उसी को ढका है और वो दिखने नहीं दे रहा है। अहंकार से यह जीव ढका हुआ, मतलब इस जड़ शरीर से, इसमें मैं बुद्धि कर, पर इसमें वही चेतना दे रहा है। बादल जब गरजते हैं या छाते हैं तो उनको देख करके मयूर नाचने लगते हैं, इस पर कहते हैं जैसे वर्षा काल में मेघागमोत्सव हृष्ट, मेघ आगम उत्सव, मेघ के छाने से जिनके मन में बड़ा सुख होता है, जो हर्षित होते हैं और प्रत्य नंदन शिखंडिना नाचने लगते हैं, अभिनंदन करते हैं, ठीक वैसे ही घर गृहस्थी के पचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति जब साधु का समागम पाता है, कोई वैष्णव उसके घर में आता है तो वो सुखी हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण है, गृहेशु तप्ता निर्वीणा जथा चित जनार्दन। कुछ ऐसे गृहस्थ होते हैं, रियली देखा गया है, गृहस्थ हैं अपने कर्मानुसार, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से प्रेम है, विष्णु से प्रेम रहता है, तो यही मन में मनाते रहते हैं कि हे भगवान कब किसी वैष्णव का संग होगा, कुछ देर तो बैठूंगा उसके साथ, सुनूंगा और बातचीत करूंगा, भगवान की आनंद से बीतेगा। तो घर गृहस्थी तो एक बहुत भारी झंझट है, ये तो आ गए, तो मनाता रहता है। लेकिन कौन व्यक्ति मनाता है? जो निर्वीण रहता है। निर्वीण का अर्थ है जिसमें वैराग्य होता है, वो समझता है कि वास्तव में घर गृहस्थी दुख धंधा है, मैं तो माया में हूं। तो उसकी अभिलाषा होती है कि कोई वैष्णव हमारे घर आ गए, कुछ देर तक तो उसके साथ बैठ करके सुखी होऊंगा। तो ठीक वह उसी तरह से जथा अच्युत जनागमे, जब वैष्णव आ जाता है उसके घर में, तो उस अच्युत के जन के आने पर, विष्णु के जन के आने पर, वैष्णव के आने पर वह उसी तरह हर्षित होता है जैसे मेघ के आने पर मयूर नाचे हर्षित हो जाता है। ये वास्तव में बहुत उपादेय शिक्षा है। घर गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सुख यही है, वैष्णव समागम। ऐसे घर में अपने भगवान की मूर्ति रखना, फोटो रखना, पूजा करना, जप करना बहुत आवश्यक है, ये सब सुख के कारण है। फिर भी जब किसी विशिष्ट वैष्णव के आने से भगवान के स्मरण में और उत्तेजना हो जाती है, वृद्धि होती है, तो आनंद भी और बढ़ जाता है और सुख बढ़ता है। वैसे मयूर बिना बादल के भी नाचते हुए देखे जाते हैं कभी कभी, लेकिन बादल के छाने पर और गरजने पर जब वो नाचते हैं तो वो नाचना उनका बहुत हर्ष के साथ होता है। इसी तरह गृहेशु तप्ता, गृह में कुछ लोग तप्त रहते हैं, जलते रहते हैं, वह ताप बाहर नहीं होता, यहां अंदर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ के घरों में हीटर दीवार में लगाया रहता है, भीतर भीतर ताप देता रहता है, ऐसे वो हृदय में तप्त रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कई तरह से ताप होता है, और उस ताप के कारण निर्वीण रहते हैं। बल्कि मन में सोचते हैं कब ऐसा समय आएगा कृष्ण की मैं सब छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में रहूंगा, आपका भजन करूंगा, लेकिन छूटता नहीं है। चाहते हैं कि हम भी झंझट से मुक्त होकर के भगवान का भजन करें, करें, छूटता नहीं है, और भजन भी नहीं छूटता है, दोनों नहीं छूटता है, घर गृहस्थी भी नहीं छूटती है और भगवान की भक्ति भी नहीं छूटती है। तो उस दशा में वैसे भक्त के सुख के लिए सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि यदि उसे विष्णु भक्त का साथ हो जाए, दो दिन के लिए, चार दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, तो वह तृप्त हो जाता है, सुखी होता है मयूर की तरह। इस प्रकार से वर्षा का वर्णन है। अभी बहुत सैद्धांतिक श्लोक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहता हूँ, और हम लोगों को जाना भी है तो इसलिए यहीं बंद करता हूँ। हर एक हाँ, निर्गुण जिस रूप में रहते हैं वैसे, मतलब प्रकृति के गुणों का, प्रकृति के नियमों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। संस्कृत में गुण शब्द का अर्थ होता है रज्जु, और गुण शब्द का अर्थ होता है मैटर, डल मैटर को गुण कहते हैं, और स्प्रीट को निर्गुण कहते हैं। दो तरह की वस्तुएं, चिद वस्तु एक अचिद वस्तु है। चिद का अर्थ होता है चेतन, और अचिद मतलब जड़ माया। तो उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे आकाश गुणमय है, वहां गुण का अर्थ है गर्जन, बादल, क्या क्या, तो गुणमय आकाश में इंद्रधनुष निर्गुण रहता है, बिना रज्जु के रहता है, बिना रस्सी के। तो इसी प्रकार यद्यपि यह जगत जड़ जगत है, मैटर है यहां भरा हुआ, बहिरंगा प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, लेकिन इस जड़ जगत में भी, गुणमय जगत में भी भगवान जब अवतार लेते हैं तो निर्गुण रहते हैं। उनका प्रकृति गुण से कोई संबंध नहीं होता, उनका शरीर, उनकी भाषा, उनका सब कुछ चिन्मय होता है, दिव्य होता है। ये यहां वर्णन किया गया।
महाराज, जब नारद मुनि ने बाल लिया गुटारे को बोला था कि पाप में तेरी पत्नी का भाग नहीं है, तो जो पति होता है इसकी भक्ति वगैरह जिसका सुकर्म हो गया, बिकॉज पत्नी उसका सेवा करती है, तो उसका कुछ भाव उसमें होता है कि
नहीं? पति में तो पत्नी का निश्चित हिस्सा होता है, निश्चित
सुकर्म और पाप में भी होता है।
नहीं, वो यदि मान लीजिए पत्नी सेवा कर रही है उसकी, तो पॉजिटिव फल तो उसे मिलेगा, लेकिन पति के द्वारा अगर कोई भूल चूक होती है तो उसमें उसको नहीं लगेगा। अरे ऐसे देखिए, वैसे भी पति में तो उसका हक हो ही रहा है, माता पिता घर छोड़कर आती है तो यह मालकिन बनती है, वैसे ही पति में उसका हक है। और यदि वह सेवा करे तो पति, ऐसा कहा गया कि पति के किए गए सुकृत में उसका आधा हिस्सा होता है, वह अर्धांगिनी है भी ऐसे भी।
पत्नी करेगा तो पति से तो नहीं मिलेगा,
है?
जो पति से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें भाग ले पत्नी करेगा
तो पति करेगा, पत्नी करेगी तब पत्नी, हाँ वो भी पति पर लागू होता है। कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने सुकृत से अपने पति को स्वर्ग पहुंचाती हैं, ऐसे कई उदाहरण। पति यदि भगवान की पूजा करती है तो उसे पति का मंगल होता है, पत्नी करती है तो पति का मंगल होता है, पुत्र का मंगल होता है, पूरे परिवार का मंगल होता है, लागू होता है। हाँ, कहीं कहीं यह बात कही गई है कि नहीं, कोई किसी का नहीं है, किसी का नहीं लागू होता है, तो वैराग उत्पन्न करने के लिए वास्तव में किया गया था। नारद जी जो मृगारी को ऐसा कहो वैराग उत्पन्न होने के लिए, और जाकर के वो पूछा भी तो वो लोग कहे कि नहीं नहीं हम नहीं। लेकिन सिद्धांत ये है कि लागू होता है, ये सब संबंध भगवान ने ऐसा बनाया है। देखिए, पुत्र यदि सुकृत करता है तो पिता उसे तर जाते हैं। उदाहरण आज भी गया जी में लोग पिंडदान करते हैं तो पितरों का उद्धार होता है। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ करके देखिए, एक जगह भगवान कहते हैं भरत जी से कि भरत, पिता बहुत से पुत्र इसीलिए उत्पन्न करता है कि वो सोचता है कि इसमें से कोई बेटा तो गया जी की यात्रा करेगा, वो आशा रखते हैं पितर लोग कि हमारे लिए कुछ करेगा। तो पुत्र करता है तो होता है, भगीरथ जी गंगा जी को लाए तो उनके पूर्वज तर गए, चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी के लिए आए थे गया जी में आए पिंडदान के, भगवान कृष्ण पिंडदान किए हैं अपने पूर्वजों के लिए। तो इस तरह से सुकृत लागू होता है, यह सिद्धांत है। और उसमें पति और पत्नी का तो बहुत ज्यादा लागू होता है।
और पिंडदान करने जाओ वहां पर हाथ पीछे लग जाते हैं तो क्या होगा?
कोई बात नहीं, कुछ अशुद्धियां होती हैं, लेकिन वो ठग के देखते ही धनी आदमी है तो धन चाहते हैं, लेकिन काम जब कराना होता है तो ईमानदारी से कराते हैं, चाहते हैं कि इसके पितरों का उद्धार होना चाहिए। तत्वतः मतलब शास्त्र से ठीक ठीक, तत्व मैंने ठीक ठीक, अधूरा नहीं, बिना संशय के कंप्लीट तत्व का ही अर्थ। निर्विशेष को समझने के लिए पहले विशेष का अर्थ समझना पड़ेगा। विशेष का क्या अर्थ होता है? विशेष का अर्थ होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पार्थक्य को विशेषता कहते हैं। जैसे यह काला है या उजला है तो कहेंगे कि यह इससे विशेष वस्तु है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आकार, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, भिन्न भिन्न वस्तुओं को विशेष कहते हैं। निर्विशेष का अर्थ होता है कुछ भी विशेषता नहीं है, न आकार, न रूप, न रंग, न कुछ भी, भेद नहीं है, निर्विशेष कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो परम सिद्धि का स्थान है उनमें विशेष है, वहां कोई सेवक नहीं है, स्वामी नहीं है, न घर है, न मकान है, न ये है, न वो है, शून्य निर्विशेष है, उसको निराकार कहते हैं, निराकार उसी को कहते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को तारने के लिए आए थे इधर, और शून्यवादी बौद्धों को कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करो कि एक दिन शून्य हो जाओ, दुख नहीं होगा, खत्म हो जाओ। जीव खत्म कैसे होगा, भगवान इसको सनातन कह रहे हैं, शरीर भले खत्म हो जाएगा, जीव खत्म नहीं होगा, न हमने ते हमने माने शरीर, लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन खत्म हो जाएंगे, उसी को निर्वाण कहते हैं, वो तो और पागल है। प्रभुपाद जी निर्विशेष वादियों को और शून्यवादियों को तारने के लिए आए थे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। ये सब शास्त्रीय ये फिलोसफिकल टर्म है, लेकिन बड़े क्लियर है। ज्यादातर संसार में निर्विशेषवादी और शून्यवादी है, वैकुंठवादी या सविशेषवादी तो बहुत कम है। जैसे हम लोग यहां देखते हैं, माइक है, किताब है, टेबल है, गाय भैंस आदमी जानवर दूध वृक्ष कंप्यूटर चार मार फोटो सब कुछ है, तो अप्राकृत जगत जो है दिव्य जगत इसी प्रकार की परफार्मालिया से परिपूर्ण है, लेकिन वहां जो कुछ भी बना है सब स्वरूप शक्ति से बना है, और यहां जो कुछ बना है सब जड़ प्रकृति से बना है, बहिरंगा माया शक्ति से, अंतर इतना ही है। वह नित्य है, वह चिन्मय है, आनंदमय है या दुखमय है, अनित्य है, क्योंकि प्रकृति द्वारा बना है, जड़ प्रकृति द्वारा। लेकिन निर्विशेषवादी लोग विचार करते हैं तो कहते नहीं नहीं, जहां तक रूप की बात है सब नश्वर है, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां कोई रूप नहीं, कुछ नहीं, शून्य खत्म, वो कल्पना करते हैं, क्योंकि इससे दुखी हो जाते हैं कि रूप वो समझते ही नहीं है कि कुछ दिव्य रूप होता है, चिन्मय रूप होता है, इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोगों में तो यही बात पढ़ाई जाती है कि दिव्य जगत है, वहां की सब कुछ स्वरूप शक्ति का विकार है, जड़ कुछ भी नहीं, उसी जगत में जाने के लिए तो सब साधना है, भगवान की भक्ति है। ठीक है, समाप्त करें, आरती करना है, भगवत की आरती कर रहे हैं।